मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के उत्तम क्षमा धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के दशलक्षण पर्व की शुरुआत हो गई। आज पहला दिन है। हमें कोई भी चीज अपने जीवन में पानी हो तो सिर्फ कामना करने से वो चीज प्राप्त नहीं होती, उसके लिए प्राप्ति का जो उपाय है, जो पुरुषार्थ है, वो भी हमें करना आवश्यक। हमें अगर अपने जीवन में धर्म को प्राप्त करना है, धर्म को प्राप्त करने की कामना हमारे मन में है, तो हमें उपाय भी करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रयत्न भी करना पड़ेगा, हमें पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। हर आदमी चाहता है कि उसे दूसरे लोग अच्छा कहें, लेकिन किसी को अच्छा कोई कब कहेगा? जब वो अच्छा होगा तब ना कहेगा, और फिर उस अच्छा होने के लिए उसे कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, सबसे पहले हम योग्यता हासिल करें फिर कामना करें, कहते ऐसा है। हम अगर अपने जीवन में क्षमा धर्म चाहते हैं तो हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा कि वो क्षमा धर्म किस वजह से नहीं आ पा रहा है। मुझे वो चीज अपने जीवन से अलग करनी पड़ेगी, और जिस चीज के लिए मैं पाना चाहता हूं उसके लिए मुझे प्रयत्न भी करना पड़ेगा। दो काम एक साथ करना पड़ते हैं। जैसे किसी को अपने घर में बुलाना हो तो बुलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, कैसे आएंगे निमंत्रण देना पड़ेगा, और फिर बुला लिया तो जगह भी तो करो, बिठा लोगे कहां? और आपका इतना इंप्रेशन है कि उनके बुलाने पर वे आ ही जाएंगे। एक सामान्य सी चीज अपने जीवन में हम ऐसे करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में क्षमा धर्म आए, इसके लिए हमें अपने भीतर क्षमा के जो विपरीत कषायें हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब हमारे भीतर क्षमा धर्म के लिए पात्रता आएगी, और फिर वो क्षमा धर्म जो हमारे भीतर आया है उसका उसके लिए भी हमें निरंतर सजग रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। पात्रता हासिल करना बहुत जरूरी है। जैसे पानी बरसे और कोई व्यक्ति अपना कटोरा भरना चाहे तो क्या करेगा? कटोरे को रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, भर जाएगा। हाँ भर जाएगा, लेकिन कैसा रखना पड़ेगा? सीधा रखना पड़ेगा, उल्टा रखें? कटोरा रखने का कहा था आपने, हमने रख दिया उल्टा रख दिया कटोरा उधर बाहर, तो भरेगा क्या? वो नहीं भरेगा। उसमें रिसेप्टिविटी होना चाहिए, उसमें पात्रता होनी चाहिए, उसमें कुछ एम्प्टी कुछ खाली होना चाहिए जहां वो भर सके। और अगर हमारे भीतर पहले से ही कुछ भरा हुआ हो कचरा, एक राजा साहब क्या पहुंच गया था साधु और उनसे कहा कि कुछ दे हो भिक्षा में, तो उन्होंने कहा कल देंगे, लेकिन आप मुझे पहले उपदेश दो कोई, तब तो हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि उपदेश भी हम कल ही देंगे आपको, और बस दूसरे दिन पहुंचे और उनके सामने कटोरा कर दिया, उस कटोरे में पहले से ही कचरा भरा था। तो राजा ने कहा कि अरे हम इस कटोरे में आपको भिक्षा में मिठाइयां देने वाले थे और इसमें तो कचरा पहले ही से भरा है, इसको पहले। तो मालूम साधु जी ने क्या कहा कि नहीं आप तो देव, आपको क्या मतलब इससे, हमारे कटोरे में क्या है आपको देने से मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी मिठाई बेकार हो जाएगी उस कचरे भरे हुए। तो मालूम साधु ने क्या कहा कि इसीलिए तो मैंने भी तुम्हें कल धर्म का उपदेश नहीं दिया था, पहले थोड़ा कचरा खाली करो अपने भीतर का, फिर हम तुम्हें धर्म देंगे। ठीक ऐसा ही ये धर्म है, हम कोई भी चीज बहुत अच्छी अपने भीतर लाना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर जो बुरी चीजें हैं उनको अलग करना पड़ेगा, और अच्छी चीजों को लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मेरे ख्याल से। बुरी चीजों को अलग कर दीजिएगा, अच्छी चीजें वहां हैं पहले से। क्षमा हमारा अपना स्वभाव है, क्रोध उसके ऊपर उसे विकृत करने वाली चीज है। सिर्फ एक मोहनी कर्म है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को थोड़ा ढक लेता है, पूरा नहीं ढक सकता, क्योंकि हमारे स्वभाव को पूरा ढक लेगा तो नष्ट ही हो जाएगा। और दर्शनावरण कर्म है, ये भी बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है, वो भी सुख दुख देने वाला ना वेदनी कर्म है, वो भी। सारे कर्म ज्यादा बिगाड़ नहीं करते। मोहनी कर्म ऐसा है जैसे कि ज्ञानावरणी कर्म तो ये है कि नुक्ती का लड्डू बना था उसमें से थोड़ा सा मिला, दर्शनावरणी में भी थोड़ा सा मिला, लेकिन एक ऐसा लड्डू जो पूरा तो मिल रहा है पर उसमें विष पड़ा हुआ है। पूरा लड्डू खाने से पेट तो भर जाएगा पर मरण भी हो जाएगा। मोहनी कर्म ऐसा ही है जो कि हमारे जीवन में हमारे पूरे जीवन को विषाक्त कर देता है, उसे विकृत कर देता है, हमारे स्वभाव को नष्ट कर देता है। वो कषायें इस मोहनी कर्म के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो सब हमारे भीतर हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे कि आप गुस्सा मत करें, क्या फायदा कहने से, कर तो पाएंगे नहीं आप ऐसा। मैं कहूंगा भी तब भी, मैं खुद भी अगर ये कहूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए तो ठीक है, एक आध दो दिन नहीं करूंगा, चार दिन नहीं करूंगा, 40 दिन नहीं करूंगा, कभी ना कभी तो मौका आएगा तब तो करूंगा, क्योंकि मेरे भीतर वो कषाय तो पड़ी हुई है। अब क्या करूं ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में दो तीन बातें कर देने की हैं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं, युधिष्ठिर का उदाहरण है, अपन नबी पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब लोग हमारे सामने नहीं है इसलिए एकदम हमको विश्वास नहीं होता कि इनने ऐसा करा भी होगा। युधिष्ठिर को सत्य बोलने के लिए कहा गया था, याद करो कि मैं सत्य बोलूंगा, उन्होंने याद ही नहीं किया 6 महीने तक। गुरुजी बहुत नाराज हुए, बहुत पिटाई करी, उसके बाद उनको 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि याद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने मेरे लिए कहा है वो मैं अपने जीवन में उतार लूं तब तो उसको कहूं। ऐसा उनके जीवन की घटना आती है, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। मैं उस तरफ आपका इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम ये जान लें कि ये जो मेरे भीतर क्रोध है वो क्यों है, उसकी वजह क्या है। और अगर क्रोध है तो वो मेरी अपनी मजबूरी है, या मेरी अपनी कमजोरी है, या मेरी अपनी चॉइस है, या मेरी अपनी नियति है। देखें अपन इस तरह विचार करें, और क्रोध मुझे कितना करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, ये जरा डिसाइड कर ले, फिर देखो सारा काम हो जाएगा। हाँ, बहुत मजे की चीज है इतना भर करना है। क्रोध की वजह क्या है? क्रोध की वजह और जो भी हो बहुत आंतरिक है, बाह्य में तो सिर्फ निमित्त मिलते हैं, बैठा तो सारा अंदर ही है। उसकी एक ही वजह है, अपेक्षाएं। जिसकी जितनी महत्वाकांक्षा होगी, जिसकी जितनी अपेक्षाएं दूसरे से होगी, वो उतने जल्दी क्रोध में गिर जाए, उतने जल्दी क्रोध कर दे। जितनी अपेक्षा होगी, मैंने सोचा था कि जल्दी से सारा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं दूसरा काम करूंगा, वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा और फर्स्ट डिवीजन लाएगा, लेकिन वो तो थर्ड डिवीजन लाया, मुझे गुस्सा आ गया। बाजू वाले का फेल हो गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब गुस्सा नहीं आया। मैंने जिससे जो अपेक्षा कर रखी है उसकी पूर्ति नहीं होने पर गुस्सा आता है, और कोई वजह नहीं है। वही अगर कारण है तो हमारी अपेक्षाएं हैं, और अंतरंग में तो हमारे क्रोध कषाय है ही। चले जा रहे थे एक जनाब उनके बेटे के साथ रस्ते में, तो जेब से रूमाल निकाला, उसके साथ 10 रुपए का नोट खिसक के नीचे गिर गया। उनने देखा नहीं, पीछे एक व्यक्ति आ रहा था, उसने उठा करके और उनको 10 रुपए का नोट दे दिया। तो मालूम जिसने उठा के दिया था उसे तो दिया धन्यवाद, और बेटे का पकड़ा कान, क्यों रे तू चल रहा था मेरे साथ में देख नहीं सकता था, 10 रुपए का नोट गिर गया। उस पर गुस्सा आ गई, क्योंकि इससे अपेक्षा थी, जिससे अपेक्षा नहीं थी उसने 10 रुपए का नोट उठा के दे दिया तो थैंक्स, उसके लिए धन्यवाद। अब देखना मजा, थोड़ी दूर और चले, अब की बार फिर रूमाल निकाला, तब की बार फिर एक नोट नीचे गिरा। बेटा बिल्कुल पहले से तैयार था, एक बार चोट खा चुका था, उसने फौरन उठा के दिया तो धन्यवाद तक नहीं कहा, तो तुम तो करोगे ही और नहीं तो क्या। जिससे अपेक्षा होती है उससे कार्य की पूर्ति होने पर धन्यवाद के लिए मन प्रसन्न नहीं होता, और अगर पूर्ति ना हो तो अप्रसन्न जल्दी हो जाता है, नाराज जल्दी हो जाता है। ये क्या चीज है, ये हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। तो भैया इतना काम तो हम कर ही सकते हैं कि ज्यादा दूसरे से अपेक्षा नहीं रखें, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भैया ठीक। धिक परवस्ताम, परवस्ता को धिक्कार है, जहां जितनी परवस्ता है जितने हम अपेक्षा रखेंगे उतना अधिक हम जो है परवश हो जाएंगे, और परवस्ता तो हमें क्रोध में ही ले जाती है, और फिर हम कर बैठते हैं, फिर हम अपने को संभाल भी नहीं पाते। मालूम पड़ गया कि अपेक्षा नहीं करनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हो जाती है अपेक्षा, अब जैसे हमें आपसे अपेक्षा हो कि आप हमारी बात मानेंगे, और नहीं मानूं तो थोड़ी सी गुस्सा आएगी, फिर वो गुस्सा चेंज हो जाता है, दुख में बदल जाता है, दुख में ही बदल जाता है। कई बार क्रोध की कई वैरायटी हैं, एक तो होता है कि क्रोध आने पर हाथ पैर कांपने लगते हैं, लाल आंखें हो जाती हैं, वो एक बहुत बाहरी चीज है, ये अब आजकल नहीं होता, इतनी गुस्सा नहीं आती किसी को, अपना सिर मार लेंगे ज्यादा होगा दीवार से, या वीपिंग रोने लगेंगे, ये भी क्रोध का एक तरीका है। तो दुखी हो जाना भी एक क्रोध की वैरायटी है, दुख होने लगता है कि अरे देखो ऐसा क्यों कर लिया, क्रोध से भी दुख हो सकता है। बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, मैं इस बारे में कभी फिर आपसे बात करूंगा, एकदम सहसा इस विषय पे अगर मैं बात करूं तो वो दूसरा विषय रह जाएगा, पर आता है। हम क्रोध के वशीभूत होकर के भी दुखी हो जाते हैं, हम क्रोध के वशीभूत होकर भी हंस लेते हैं, मजा देखिएगा। हां ये सब चीजें कषायें किस रूप में आएंगी हम कह नहीं सकते। कई बार अपन कहते ना कि हमारे ऊपर व्यंग कर रहे हो क्या, इसलिए हंस रहे हो क्या, इस तरह। तो क्रोध किस रूप में आएगा कहा नहीं जा सकता, पर हमारी अपेक्षा अगर है तो क्रोध जरूर आएगा, और उसके लिए करना क्या, मुझे ये देखना है कि वो मेरी कमजोरी है या कि मेरी अपनी च्वाइस है, मैं गुस्सा ही करना ही चाहता हूं, या कि मजबूरी में मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है, या गुस्सा मेरा स्वभाव है। तो हम पाएंगे कि नहीं, क्रोध करना हमारी कमजोरी है। लेकिन बड़ा मजा है, हमें ये लगता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमसे सिर पर बैठ जाएंगे अब भी, और देखने में भी आता है, तो क्या करें, करने लगे। हाँ माँ तो यही कहती है, पिता तो यही कहते हैं कि नहीं करें तो जी बिगड़त है, तनक जोर से बोल नहीं पड़त, अब उनको सुधार भी कि लाने, अपने आप को बिगाड़ रहे जी। सुझे सुधार पे का जो दूसरे को अपने को बिगाड़े दूसरे को सुधार सकें, हम स्वयं तो क्रोध करें, और अपन कह क्या देते हैं कि नहीं वो तो हम जो है दूसरे के उसको प्रेशराइज करने के लिए अपना टेरर क्रिएट कर रहे हैं, एक दहशत पैदा करके रखते हैं कि नहीं हमसे व्यक्ति जो है वो दब कर चले। ऐसा भी हम क्रोध कर लेते हैं, और ऐसा क्रोध करके हम क्रोध को अपनी नियति मान लेते हैं, क्या करें वो तो जरूरी है, वो नहीं करें अगर तो चलता नहीं भैया, काम नहीं चलता। महाराज जी की बात अलग है, महाराज जी ने करें दोनों का, अब इतने तो 17 काम है जो उनने जो कजू कही, सब कहां तक चिमाने सब कजू करत रहे। देखना एक मन में आता है, भाव आता है सबके मन में आता है कि कहां तक हम बर्दाश्त करें, एक सीमा होती है, तो फिर हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हाँ कर लो, मतलब कंसोलेशन, एक सांत्वना दे लेते हैं, गुस्सा करके भी अपने को एक सांत्वना दे लेते हैं कि हमने कजू करा गलत नहीं कर, वो कौन हम अकेले करा, सब तो दुनिया कर रही। देखना ये इतने सारे तरीके हैं करने के, बहाने हैं ये, गुस्सा करने के बहाने हैं ये, हमारी अपनी अपेक्षाएं हमें इस तरह के बहाने ढूंढने के लिए मजबूर कर लेती हैं, और हम कर लेते हैं गुस्सा। चलो ये तो बात हुई, हमने समझ लिया थोड़ा सा कि गुस्सा ऐसे ऐसे आ जाता है, और हम अब मजबूर हो गए हैं, हमारा एक संस्कार बन गया है, करें क्या अब, लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करें, गुस्सा को हम गुस्से को हम एक दिशा दे दें, कषायों को जो दिशा दे देता है वो कषायों को जीत लेता है, बहुत सीधी सी बात है।
कषाय को ऐसे नहीं जीता जा सकता कि हमने कहा कि गुस्सा नहीं करना और आपने कहा हो महाराज जी अपने करें कबंग। सो तो फिर महावीर स्वामी और उसके पहले ऋषभदेव भगवान भी कह गए को उन्हें नहीं मानी, संभव ही नहीं। उसको दिशा दे सकते हैं, एक होता है क्रोध दूसरे के अहित के लिए, दूसरे के बिगाड़ के लिए, और एक होता है क्रोध दूसरे के लिए हित के लिए। बस इतना ही हम कर सकते हैं, जिससे हमारा और दूसरे का अहित हो ऐसा क्रोध नहीं करूंगा, जिससे कि दूसरे का हित हो वैसा क्रोध ठीक है, वो सात्विक क्रोध कहलाता है। देखो इतनी देर हो गई, 3 बज गए, अभी तक नहीं आ रहे तुम लोग, जल्दी तो आओ। अब थोड़ी तेजी आ गई है, बुलावे में काहे की तेजी, अब आए जवाने हुई है जो उनको जब धर्म करने हुई है, आपको कब फिक्र पड़ी, नहीं लेकिन समय से। ये सात्विक क्रोध है। मां जो है अभी अभी बेटा लौट करके आया है, बस्ता एक तरफ रखा और बेभगन लगे भैया जी, तो फौरन हाथ पकड़ लेती, कहां जा रहे अभी खेल के आते, पहले दूध पी लो नहीं तो लगाऊं एक तमाचा, अब बताओ आप। अब तो वो गैस का चूल्हा आ गया, नहीं तो पहले तो अपन को, खैर अपने जीवन में ऐसा एकाध बार घटित हुआ होगा, हुआ होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मैं तो फिर वो ज्यादा कुछ गड़बड़ किया ना तो मां मालूम क्या करती थी, वो चूल्हे में से थोड़ी एक लकड़ी बाहर निकालू का, अपन बैठे उधर थाली पर और गड़बड़ किया कुछ तो धीरे से निकालू क्या, निकालती विकालती नहीं थी। अब ये कौन सा क्रोध है, उसे कदम कदम पर करना पड़ता घर में, काहे के लिए भैया बिगड़े ने भैया अच्छो बन जाए, और कोई कोई वजह नहीं है। कहीं कहीं पर अपने अहंकार की पुष्टि के लिए भी मां क्रोध करती है कि मेरी बात नहीं मानता, ऐसे अहंकार वश भी करती है, लेकिन 100 में 99 मौके पर उसके सुधार के लिए करती है, बिगाड़ के लिए उसके नहीं करती है। इस तरह भी अगर हम अपने जीवन में दूसरे के हित के लिए और कभी अपने मन में अगर ऐसा भाव भी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं है, क्रोध को हम दिशा दे दें। और इतना ही नहीं, जरा और विचार करें कि क्रोध कब करना है, जब चाहे तब, छोटी छोटी बातों पर, अरे नहीं ऐसे जब चाहे तब नहीं, सोच समझ के करूंगा, जब करना ही है गुस्सा तो जरा ढंग से करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, जब चाहे तब कर लिया तो लोग अपन को बुद्धू समझेंगे कि इनको हमेशा क्रोध ही आता रहता, नहीं ढंग से करें। अगर इतना भी हम सोच लें कि कब कब क्रोध करना है, किस पर करना है, सब पर तो नहीं करते हम क्रोध, हम देख लेते हैं कि हमारे क्रोध से ये प्रभावित होगा कि नहीं, जिस पर हमारा प्रभाव ही नहीं पड़ता उसके सामने हम क्रोध कहां कर सकते हैं, रस्ते से चले जा रहे हो और एक पहलवान किस्म का आदमी अगर अपन को धक्का दे देवे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ सका, नहीं तो ओवर मुश्किल हो जाएगी अब भी। और ग्राहक अगर 2500 दुकान में और कपड़ा पटक वाले भी, और फिर कह नहीं लेने तो गुस्सा नहीं कर सकते ना, दुकानदारी बिगड़ जाएगी है? तो वहां तो हम कितना किस पर करना है, किस पे नहीं करना है, कब करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है और कितनी डिग्री का करना। हाँ देखो भाई, कितनी देर तक करना, अपनो जी हल्कान करे से कब आए, ऐसा सोच लेवे कि ज्यादा नहीं, थोड़ी देर, 48 मिनट अगर उसका ड्यूरेशन है तो वो क्रोध सबसे हल्का क्रोध है। दिन भर भी चला कोई बात नहीं, रात सोने से पहले क्षमा भाव धारण कर लेवे, दूसरा दिन आवे तो वो बात समाप्त हो जावे, इतना कर लेवे, ना सही 15 दिन के भीतर कर लेवे भैया, और अगर ज्यादा चले तो 6 महीना, 6 महीना से ज्यादा चलेगा तो संसार अनंत है, मिथ्यात्व के साथ जो कषाय है वो तो अनंत संसार का कारण बनती है, 6 महीने से अधिक भी। ये जितने भी केस वेस लड़ते रहते हैं ना अपन, वकील लोग वगैरह, सारा मामला वही है, 6-6 महीना नहीं, 2-2, 5-5 साल तक केस चल रहे हैं। अब तुम ऐसो करो, बेऊंसो कर हैं तो तुम फिर ऐसो करियो, अरे भैया बड़ा मुश्किल, नहीं लड़ो चाहे तो लड़वा देंगे वो, ये क्या है, ये उसका वासना काल 6 महीने से ज्यादा चल रहा नहीं, ड्यूरेशन ज्यादा नहीं, अचार नहीं डालना, मुरब्बा नहीं बनाना भैया, गुस्सा आ भी गई तो थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बिल्कुल साफ जैसे आकाश में बादल घिरे और उसके बाद आकाश क्यों कहते हैं स्वच्छ निर्लेप, ऐसा ही नहीं कर सकते क्या हम, कर सकते, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको एक 2-3-4 उदाहरण सुना देंगे, सब समझ में आ जाएगी बात, कोई बहुत कठिन नहीं बता रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान आसान सी चीजें बता रहा हूं, ऐसा अपन कर सकते हैं और करते भी हैं कई बार, लेकिन अगर अपन अपना स्वभाव ऐसा बना लें, अगर वो हमारे हैबिट में आ जाए तो फिर हमें आसानी होगी। किसी ने अगर हमारे मन की बात नहीं कही, कोई बात नहीं। ठीक, चार बातें हैं। जब दूसरे की सुनो भैया, जब एक अपनी सुनावे की गुंजाइश निकरत, जतो सीधी सीधी रीत। और अगर दूसरे की एक भी सहन न करो और अपनी सब उसमें करवाओ चाहो, कोई नहीं मानने वाला। एक उदाहरण देते हैं, अभी आई थी वो फैमिली, अब आपको हम परिचय बाद में भी हो सकता, अभी अभी होके गए वो दो दिन पहले ही। उनके अपने जीवन की घटना, बहन ने आकर के मेरे से कहा कि महाराज घर में जो है बहुत विवाद हो जाता है, शाम को ऑफिस से लौट के आते हैं तो बिना वजह जो है और क्रोध आ जाता है, हम थोड़े तो सहन करते, फिर उसके बाद सहन नहीं होता तो हम भी कुछ कह देते तो बात बिगड़ जाती, फिर बाद में दो जने दुखी होते कि अपन ने कहा इस तरह से किया। आप उपाय बताओ कि जी आया ही नहीं। तो हमने कहा अच्छा ये तो बात है कि आप दो चार तो सहन कर लेते, कि हाँ दो चार बातें तक तो हम सहन कर सकते, फिर उसके बाद हमें भी किया आती एक आध बात तो बिगड़ जाता मामला। हमने कही तो फिर इतना करना, अब अगर वो आए और जैसे ही क्रोध किसी वजह से आ ही जाता, अच्छा क्रोध करने वाले को वजह भी मिल जाती, वो ढूंढ लेता है कहूं ना कहूं से निकाल ले, भीतर भरा हुआ रहता। तो अब की बार ऐसा करना कि अगर चार पांच बातें कहें और जब सहन हो जाए सुस्ती कर लेना, फिर कहना कि देखो अब हाथ मुंह धो लो, अब फिर कह लियो थोड़ी देर बाद जैसे हमने सहन कर लें, जब तक तनक हमें भी तनक ताकत आ जाएगी, ऐसा कह देना आप। अब वो बिल्कुल मजेदार बात हो गई, शाम को आए और सचमुच जो है गुस्से में और चार पांच बातें कहीं, तो इन्होंने भी धीरे से कहा कर ले अब हाथ मुंह धो लो, खाना वाना खा लो, फिर और जितनी रह गई उसको बाद में कह लियो। अब बस जैसे ही ऐसा कहा तो और ज्यादा क्रोध आ गया, तो क्या क्या कह रही है। उससे हम कुछ नहीं कह रहे, महाराज जी से कहा था तो उन्होंने यही उपाय बताया, बस इतना जहां सुनना था कि पानी पानी हो गए, क्रोध जो है वो शांत हो गया। भैया दो जनों में से जो क्रोध वालों काम एक बार में एक ही जनों करे दूसरों ने करे तो बहुत आराम रहता। बस जा तय कर लो दो ही जने अपने बीच में कि जब अपन करें तो अगर आप गुस्सा करो तो हमने करो और जब हम करें तो आपने करी हो, दो जने हैं तो दो जने जी तय कर लो, दो में से एक करे उस काम को और दूसरा न करे उस समय, फिर देखो आप कैसे आता है और कैसे हम नहीं जीत पाते हैं। हमें कषायों को ना स्वयं करना चाहिए, दूसरा करे तो उसमें और ईंधन नहीं डालना चाहिए। हमें दूसरे को कषाय करते देख करके मन ही मन दुखी होना चाहिए कि अपना अहित कर रहा है, मेरे निमित्त से ये कषाय कर रहा है, मैं उसमें निमित्त बन रहा हूं, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती। मेरे निमित्त से आप अपना अहित कर रहे हैं, आप अपना नरक निर्मित कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान को शायद कमट के जीप पर यही दया आती होगी कि मेरे निमित्त से तुम अपना संसार बढ़ा रहे हो कमट। ये उनके भीतर इतनी इतनी संवेदना उनके भीतर जागती होगी, तब उनका तो कल्याण हो ही गया और उनके कल्याण को देख करके कमट भी जो है शांत हो गया था, उसने भी उसी उपसर्ग के उपरांत सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और अपनी कषायों को जीत कर उसने भी मुक्ति प्राप्त। हम एक दूसरे की कषाय में सहयोगी ना बने बल्कि एक दूसरे की कषाय कम करने में सहयोगी बने, तो एक उपाय ये भी हो सकता है। इस तरह से हम चाहें तो वातावरण को एकदम हल्का कर सकते हैं। हमने आपको कई लोगों के जीवन के उदाहरण शायद पहले सुनाए, लेकिन इस अवसर पर भी फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं वो चीज़ें। एक उदाहरण तो मेरे साथ आगरा में घटित हुआ था, मैंने दो तीन उदाहरण सुनाए थे उस दिन क्रोध को लेकर आगरा में। तो एक बेटे ने सुने और वो चले गया, उसने शाम को आकर के कहा महाराज एक मेरे साथ भी ऐसी घटना हो गई। मैंने कहा आप सुनाइएगा, वो मैं फिर और लोगों को सुनाऊंगा। मैंने जो दो उदाहरण लोगों को सुनाए थे वो पहले सुना देता हूँ, फिर वो जो तीसरी घटना उसने सुनाई वो सुनाता हूँ ताकि बात बहुत क्लियर हो जाएगी। सुकरात के जीवन का है कि उनको एक बार ये 11 आने वाली है गन्ने वाली, तो उनकी जीवन साथी ने कहा कि 11 गन्ने ले आओ। गए वो बाजार से 11 गन्ने लेकर के आए और रस्ते में आए तो बड़े दानी थे, बच्चों ने घेर लिया उनको, बाबा हमको भी, बाबा हमको भी, अच्छा तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सबको दे दिए। एक गन्ना बचा, एक गन्ना बचा। डरते डरते घर आए, दरवाजे खुलवाए, जैसे ही उनने देखा उनकी जीवन साथी ने कि 11 का कहा था, एक लेकर के आए, आओ देखा ना ताओ और छुड़ाया और एक पीठ पर उनके लगा दिया उन्होंने, एक जुआ ले आए, एक इतने सवेरे के गए। अब वो भी मजेदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अब इनको गुस्सा आ गया तो अपन काय को करो, उनने दो ही उठाए, कह ले भगवान तोड़ने तक नहीं पड़े, तुम ले लो एक हम खत्म, अपने आप ही होगा वैसा। अब देखो कितना हल्का हो गया वातावरण। वो एक बार आए तो घर आए तो 2:30 बज गए, भजन पूजन में ऐसे लीन हो गए कि 2:30 बज गए। अब उनको भोजन में बहुत देर हो गई थी, वो थाली भरोसे रखी हुई थी, तो इनको बहुत गुस्सा आई। आते ही साथ जो है उनने चिल्लाना शुरू कर दिया कि खूब देख लो हमने जो आडंबर तुम्हारा और इतनी भजन पूजा कर रहे, हमें तेजा बनाए धरें, अब जब ठंडी हो गई सब बहुत बातें। तो इनको लगा कि आज तो पारा बहुत गर्म है, गड़बड़ हो जाएगी, चुपचाप निकल चलो बाहर, फिर थोड़ी देर में जब ठंडा हो जाएगा मामला तब आएंगे। तब इनने देखा कि 2:30 बजे तो आए थे और अब ये बिना खाए और लौटन लगी। तो जैसे ही वो लौटने के हुए तो उनने धरो तो धोन जो हाथ मार धोई वो है, तो वो उठा के थी फेंका उनके ऊपर, कहाँ जा रहे अब। तो ये फौरन हंसते हुए वापस लौटे, कहने भगवान अभी तक तो हमने सुना था कि गरजते बादल बरसते नहीं थे, आज तो बरस भी गए, कहने बहुत। अब देखो आप ये उदाहरण है, देखना ये कितना माने एक क्रोध दिलाने के लिए तत्पर है, क्रोध कर रहा है, और दूसरा शांत है, वो उसके क्रोध को भी शांत कर। ऐसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं। मैं आपको ये उदाहरण सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप हंस करके और खुश हो लें, नहीं, जब कभी ऐसा अवसर आए तब यही उदाहरण अपने जीवन में भी प्रस्तुत करें। और इन दोनों उदाहरण को सुनने वाले उस बेटे के साथ क्या घटित हुआ वो उदाहरण और आपको सुना दूं, क्योंकि ये तो बहुत पुराने उदाहरण है, लेटेस्ट अपने जीवन में जो घटित होता सामने सामने। वो कहता है कि मैं आपका प्रवचन सुन के और MDGN कॉलेज से बाहर निकला अपनी कार लेकर के, और जैसे ही मैंने तेजी के साथ टर्न की वहाँ से एक गाड़ी आई और दोनों गाड़ियाँ बस जस्ट मतलब 1 इंची का फर्क रह गया और दोनों टकराते खड़ी हो गई, उसकी भी और हमारी। और दूसरा कोई अवसर होता तो दोनों में से शायद दोनों ही खोल करके और बाहर आकर के और दो बातें नहीं दो हाथ भी कर लेते। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने कि ये सुन के गया था क्रोध के ऊपर, उस वो तो अपने उसी प्रवचन में खोया था, उसने सुनाया मुझे कि मैं तो वही सोच रहा था सुकरात का, तो मुझे अचानक जो है हंसी आ गई, मैंने मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही सामने कार में बैठे वाले ने मुझे मुस्कुराते देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैं किसी और वजह से प्रवचन की वजह से मुस्कुरा रहा था लेकिन वो मुझे मुस्कुराते देख करके मुस्कुराने लगा, और जहाँ गुस्सा आना चाहिए था वहाँ दोनों मुस्कुरा दिए। और बोले मैंने हाथ निकाला बाहर और कहा तू पहले निकाल ले, वो उसने हाथ निकाला कि तुम पहले निकाल लो, दोनों बाकायदे उतरे, दोनों ने हाथ मिलाया, बहुत ठहाका लगा के हंसे और फिर अपनी अपनी कार में बैठे और चले गए। अगर कोई दूसरा अवसर होता तो दोनों क्रोध से भर जाते। ऐसे अवसर जबकि हम क्रोध से भर सकते हैं, उन अवसरों को हमें कैसे हल्का बना देना है, कषाय को कैसे डाइल्यूट करना है, कषाय को कैसे कम कर देना है, मंद कर देना है, यही तरीके हैं भैया। क्रोध को जीता जा सकता है प्रेम से, कोहम पीय पनाश से। क्रोध अगर नष्ट करता है तो प्रीति को नष्ट करता है, और उसे जीतने का उपाय क्या है, प्रेम ही उसको जीतने का उपाय है। और हम प्राणी मात्र के प्रति अगर प्रेम भाव रखें, जैसा हम अपने बंधुजनों के साथ प्रेम भाव रखते हैं, जैसा हम अपने परिवारजनों के साथ रखते हैं, अगर ऐसा ही हमारा सबके प्रति हो जाए तब तो फिर बताइए, अच्छा कोई अपने प्रियजन के प्रति गुस्सा करता है क्या? क्या कभी हम हर व्यक्ति के जीवन में एक ना कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ वो गुस्सा करना पसंद नहीं करता, जहाँ वो अपने को ऐसी स्थिति में प्रस्तुत नहीं करना चाहता कि वो गुस्सा करता है? अगर ऐसा ही हम सबके प्रति भाव रखने लगें तो कोई वजह नहीं है कि हम इस कषाय को ना जीत पाएं, तो कम से कम मंद तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको कि अपन क्रोध को जीतने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण और आपको सुनाता हूँ। क्रोध को प्रेम से ही जीता जा सकता है। वो उदाहरण है बुद्ध के जीवन। बैठे हुए थे बुद्ध एक पेड़ के नीचे, एक व्यक्ति आया, उसने उनको बहुत सारी गालियाँ दी, बहुत खराब खराब बातें कहीं, पता नहीं कोई बात होगी उसके भीतर और उसकी भड़ास होगी, निकाल दी उनने उन। और जब वो बहुत क्रोध से भर करके
और ऐसे अपशब्द कह रहा था, तब जो उनके शिष्य बैठे थे वो तो बहुत तिलमिला रहे थे कि हम अगर बुद्ध जरा इशारा करें तो इसको हम बता दें कि तुम किससे ये ऐसी बातें कर रहे। लेकिन बुद्ध इसके बाद भी मुस्कुराते जा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भी रोका कि कुछ नहीं कहना, इसको कह लेने दें जो कुछ भी कहना। वो कहता रहा और जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने थूक दिया उनके। उन्होंने धीरे से पहुंच लिया, फिर भी मुस्कुराते रहे। वो वापस लौट गया। आनंद उनका एक शिष्य था, उसने कहा कि भगवान मुझे समझ में नहीं आया। वो इतनी गालियां दे रहा था, अंत में उसने थूक दिया, हमें भी आप मना करते रहे, खुद भी मुस्कुराते रहे, ये क्या चीज़? कुछ तो जवाब देना था ऐसे अन्याय को कि हम सहन करते रहे। बुद्ध ने कहा कि आनंद एक बात पूछता हूँ तुमसे, पिछले वाले गाँव के लोग कैसे थे? बहुत अच्छे लोग थे। जब हम उनके गांव से निकले तो उनने हमें क्या कहा? उन्होंने हमसे बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कही और हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेज में दी। आनंद हमने उनकी वो बढ़िया बातें और वो अच्छी अच्छी चीज़ें क्या ले ली थी? नहीं भगवान, वो तो हमने उनको वहीं लौटा दी थी। तो वो अपने पास नहीं लाए थे ना? अपन नहीं लाए थे। बस आनंद ऐसे ही इस गाँव में इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, यहाँ पर उसने मुझे बुरी बातें कही और दैनिक लिए उसके पास कुछ नहीं था तो उसने थूक दिया मेरे ऊपर। ना मैंने उसकी गालियाँ ली, ना मैंने उसका थूका हुआ लिया। तो बताओ आनंद, वो क्या मेरे पास रहेगा या उसी के पास? अब क्या कहें आनंद, बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम अगर उस चीज़ को महत्व देंगे तो उसी चीज़ से हम राज भी कर सकते हैं, उसी चीज़ से देश भी कर सकते हैं। जब कोई हमारा अपना होता है और वो कड़ी बात भी कह ले तो बुरा नहीं लगता, और अगर उससे हमारी बुराई हो और फिर वो मीठी बात भी कहे तो कड़वी मालूम। ये क्या चीज़? होली के दिन चाहे जो चाहे जैसी बात कह ले बुरा नहीं मानते, होली के दूसरे दिन कह ले वे तो भाई ज्यों की त्यों। बताइए आप क्या बात क्या? हम उस चीज़ को महत्व देते हैं और उस महत्व दे करके हम उसे, और अपने भीतर बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम खिलौने हों दूसरे के हाथ के, कि उसने बटन दबाया और हम चालू हो गए, उसने जरा एक प्रशंसा की बात करी हम खुश हो गए, जरा उसने एक बुरी बात कही हम क्रोधित हो गए, बाहर हमारी जैसे मशीन हो और उसके हाथ में उसका बटन हो, वो दबाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो दबाएगा तो हम नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा विचार करना चाहिए अपने भीतर कि क्या हम इस तरह दूसरे के अनुसार अपने जीवन को भला बुरा बनाएंगे, या कि हम स्वयं विचार करेंगे। अगर इस तरह हम विचार करें और मैत्री भाव रखें, सबसे प्रेम भाव रखें, तो हमारे जीवन में जो जितना जीवों के प्रति प्रेम भाव रखता उसके कषायें उतनी मंद हो जाती। मेरे जीवन का तो इतना ही अनुभव है, आप जितना अधिक दूसरे के प्रति वात्सल्य, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए, अगर स्वार्थ है उस वात्सल्य और प्रेम में तो ज़रूर वो क्रोध में ले जाएगा, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं होने पर क्रोध आएगा और अपेक्षाएं पूरी होने पर भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। और अगर निस्वार्थ है तो फिर देखिएगा थोड़ी देर को अगर आएगा भी तो अपने आप आसानी से हम उसे सब्साइड कर सकते हैं, उसे जीत सकते हैं। कोशिश करिएगा कि हम भी जो है अपने भीतर की इन कषायों को समय रहते और मंद करें और धीरे धीरे इन पर विजय प्राप्त करें। आज का समा धर्म अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
राग विख्या फिर भी वो अपनी मृदुता को नहीं छोड़ता और मीठे फल ही देता है।
इसी तरह हमारे अपने जीवन में भी और ये मार्ग और धर्म आवे तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाए। इस मधुता को हमारे भीतर आने से कौन रोकता है? कोई ना कोई तो है जो हमारे स्वभाव को विकृत किए हुए हैं, हमारे स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता। वो और कोई नहीं है, वो हमारा अहंकार, हमारी मान कषाय है। भैया जितने भी संसार में पाप होते हैं वे पाप तो कारी हैं, उसका कारण कषाय ही है। सारे संसार का कारण अगर कोई कहना चाहे तो वो कषाय ही है। चार कषाय हैं, उसमें से एक मान कषाय भी संसार को बढ़ाने वाली है। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे। अपन पढ़ते हैं दस लक्षण की पूजा में पढ़ते हैं, और इसकी घटना भी है। ऐसा नहीं लिखा ये लाइन, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। मुनि महाराज जी थे और वे माशोपवासी थे, बड़ी तपस्या करते थे। और एक दिन जब उनका माशोपवास पूरा हुआ तो जहां ध्यान में बैठे थे वहां से उठ करके वे चले गए। उनके जाने के बाद एक दूसरे मुनि महाराज जी उसी स्थान पर आकर के बैठ गए। लोग तो यही समझे कि यही माशोपवासी मुनि महाराज हैं, तो आकर के जो है उनकी वैसी ही पूजा और आराधना करने लगे। बड़ी प्रशंसा करी कि ये तो माशोपवासी हैं। उनके मन में ऐसा सुनकर के आना तो ये चाहिए था कि भैया हम नहीं हैं, वो तो दूसरे हैं, हम तो अभी आए, हम इतने तपस्वी नहीं हैं, आप हमारी प्रशंसा व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसा ना आकर के उनके मन में आया कि ठीक है, वो चुप रहे। उसका परिणाम क्या हुआ था? करम नीच गति जगत में हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए थे वो मर करके। ऐसी ऐसी पुराणों में घटना आती है। ये मान कषाय का था। रावण का क्या हुआ था सब जानते हैं, काहे के पीछे, उस अहंकार के पीछे जरा सा कि अब हम हरण करके ले आए हैं और अब हम ऐसे ही कैसे दे दें, हमारी तो नीची हो जाएगी नाक, उतने से के पीछे। जबकि कई कई बार मंदोदरी से रावण ने कहा है कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं राम की सीता को वापिस लौटा दूं, पर अहंकार फिर एक बार हिलोर मारता है भीतर और कहता है ऐसे कैसे। दीपायन मुनि महाराज जी ने तपस्या करी और उस तपस्या के फल स्वरूप जो है तेजस रिद्धि विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। रिद्धि तो जो है छठे सातवें गुण स्थान में विचरण करने वाले किसी महामुनि के ही हो सकती है, सामान्य मुनि के नहीं होती, आज पंचम काल में नहीं होती। और इतनी महान रिद्धि हो जाने के बाद भी वो जो कषाय भाव उनके भीतर आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया था? उसका मेन कॉज क्या था? अहंकार को चोट पहुंच गई, अपमान को सहन नहीं कर पाने के कारण जो है क्रोध के वशीभूत होकर के पूरी द्वारका नष्ट हो गई, स्वयं का जीवन भी नष्ट हो गया। ऐसे कई उदाहरण जो है पुराणों में अपन पढ़ते हैं इस मान कषाय की वजह से। अपने जीवन में भी अपन देखते हैं कि जब जब भी हम अहंकार करते हैं तो उससे प्राप्त क्या होता है, सिवाय पीड़ा के और कोई चीज प्राप्त नहीं होती। मान कषाय हमें बहुत रिजिड बना देती है, हमें बहुत एग्रेसिव बना देती है, आक्रामक बना देती है, ग्राहक नहीं बनने देती, रिसेप्टिव नहीं बनने देती। हम फिर किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मान लेवे तो क्या फिर वो श्रेष्ठता हासिल कर सकता है? उसने तो पहले से ही मान लिया अपने को श्रेष्ठ, अब और क्या श्रेष्ठ होगा वो? तो हम अपने को जैसे नहीं है वैसा मान लेते हैं तो फिर वैसे कभी नहीं बन पाते जैसा हम बनना चाहते हैं। जब भी हमें श्रेष्ठता को हासिल करना हो तो हमें अपने आप को श्रेष्ठ मानने का अहंकार नहीं करना, बल्कि हमको और श्रेष्ठ बनना है ऐसा निरंतर विनम्र भाव रखना चाहिए, तब जाकर के हम श्रेष्ठ बन पाते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बैन, हीरा मुख से ना कहे, क्या बोलते हैं, हाँ, लाख हमारा मुख। जिसके पास योग्यता है, जिसके पास श्रेष्ठता है, वो अपनी उस योग्यता और श्रेष्ठता का बखान ना अपने मुख से करता है ना दूसरे से सुनना चाहता है। वो जो उसकी श्रेष्ठता है वो उसके लिए बहुत आत्मसंतोष देती है, उसके अतिरिक्त किसी सम्मान की उसे आवश्यकता नहीं है। असल में अहंकार है क्या चीज, अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की आकांक्षा रखना, यही अहंकार है। अपनी योग्यता के अनुसार भी सम्मान की आकांक्षा रखना यह अभिमान कहलाता है। थोड़ा सा फर्क है अहंकार और अभिमान में। जब हमारे अंदर योग्यता नहीं है फिर भी हम योग्यता से ज्यादा सम्मान चाहते हैं तो वो हमारा अहंकार है, और जब हम योग्यता का सम्मान चाहते हैं तो वो हमारा अभिमान है। और एक और तीसरी स्थिति है, जब हम अपनी योग्यता का सम्मान तो नहीं चाहते लेकिन अपमान भी नहीं चाहते, वो हमारा स्वाभिमान है। एक चौथी स्थिति और है जिसमें कि हमारी योग्यता का कोई सम्मान करे तो और अपमान करे तो अब हमको कोई मतलब नहीं, वो निराभिमान और निराहंकार की अवस्था है। वास्तव में तो वही प्राप्त करने योग्य है, लेकिन हम तो छोटी छोटी सी चीजें पाने के लिए और अहंकार कर बैठते हैं, और नहीं भी प्राप्त होती है तब भी ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसे हम उसके योग्य हैं। तो यही तो हमारा अहंकार है जो हमें खाए जाता है। और ऐसा नहीं है, ये एक तरह का बहुत संक्रामक रोग जैसा है। आप दूसरे के सामने अकड़िएगा तो दूसरा भी अकड़ेगा, हैं? आप किसी के सामने झुकिएगा तब दो स्थितियां बन सकती हैं कि आप किसी के सामने झुक रहे हैं तो सामने वाले को भी थोड़ा सा झुकने का मन होगा, या फिर थोड़ा अकड़ने का मन होगा कि देखा बच्चू झुके ना आप। दोनों स्थितियां हो सकती, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं कि अगर कोई हमारे सामने शरीर से ही सही, वाणी से ही सही, ना सही मन से अगर झुक जाता है तो हमारी भी कषाय जो है थोड़ी सी और मंद तो हो जाती है कि अरे भाई अब जो है दीनहीन हो गया, इस पर अब जो है क्रोध करना या और कषाय करना ठीक नहीं है। तब अपने यहाँ पर जो है अहंकार को विनय से जीता जाए, और अहंकार विनय को नष्ट कर देता है। कोहो पीय पनाशेई मानम विनय पनाशेई, क्रोध प्रीति को नष्ट करता है तो मान विनय को नष्ट कर देता है, विनम्रता को हमारे नष्ट करता है। और जो मैंने कहा था आपसे कि मान हमारे लिए विष के समान है, सचमुच ऐसा ही है, और मार्दव हमारे लिए अमृत के समान है। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहें, पहले भी शायद कभी मैंने सुनाई हो। क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा कलाकार था और सच्ची में वो अच्छा कलाकार था, लेकिन क्या करें, कोई कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन इसके बाद भी कषायों को जीत ले तब ना अच्छा हो। वो अपनी कषायों को तो नहीं जीत पाया, पर कला जरूर उसने हासिल करी थी। मूर्तियां बनाता था, बहुत ऐसी मूर्ति बनाता था कि कोई डुप्लीकेट और ओरिजिनल में डिफरेंस नहीं कर पाता था। और एक बार उसके मन में आया कि मैं क्यों ना अपनी मूर्ति बनाऊं, और अपनी मूर्ति बना करके और रखूं तो हो सकता है कि एक दिन मृत्यु आए और वो भी धोखे में पड़ जाए। ऐसा उसके मन में आया, जबकि मृत्यु को कौन धोखा दे सकता है। लेकिन उसने कहा मैं तो ऐसी मूर्तियां बनाऊंगा कि मृत्यु भी चक्कर में आ जाएगी कि कौन है सही और कौन है डुप्लीकेट। उसने बनाई अपनी 8 मूर्तियां बनाई, 4 इस तरफ रखी, 4 इस तरफ रखी, खुद उसके बीच में बैठा रहता था, 9 मूर्तियां। अब आएगी मृत्यु तो उसको तो चक्कर में आ जाएगी वो। और सचमुच में मृत्यु आई। देखो भाई कहानी है, कहानी में ऐसा ही होता नहीं तो आपका सच्ची सच्ची में ऐसा हो। तो कहते हैं कि मृत्यु आई और मृत्यु भी चक्कर में पड़ गई कि अरे जिसको ले जाना है वो तो समझ में नहीं आ रहा, 9 लोग किसको ले जाए। तो कहते हैं उसने पूरा चक्कर लगाया, लेकिन मृत्यु भी होशियार है, वो जानती है कि आदमी कहाँ कमजोर है। उसने सब कुछ देखने के बाद कहा कि वाह अद्भुत है कला, हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कलाकार मिलता अगर तो वो कलाकार को मैं धन्यवाद देती और भारी प्रशंसा करी, और फिर धीरे से कहा लेकिन एक थोड़ी सी गलती रह गई, अगर वो गलती और इसमें से ठीक हो जाए तब तो फिर बहुत उत्कृष्ट कला है।
अब अगर ऐसा कोई कहे तो चुप कैसे बैठ सकते हैं?
तो कलाकार फौरन बोलता, कौन सी गलती जल्दी बताओ। तो इसने कहा, यही गलती, पकड़े गए आप। आपका अहंकार कि मैं मूर्ति बनाने वाला श्रेष्ठ मूर्तिकार, आपका ये अहंकार आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, प्रतीकात्मक उदाहरण है। यहां कह रहे हैं कि मान महाविश्व, अरे ये विष कैसे हो गया, ऐसे विष हो जाता है, ऐसे हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन वो मार्दव सुधा अनूप कह रहे हैं, अमृत के समान है, हमको हमेशा हमेशा के लिए इस संसार शरीर और भोगों से मुक्त कर देता है। इस तरह अगर हम इस मान कषाय को विचार करें और उसको जीतने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीत सकते हैं। अहंकार को जीतने के उपाय भी आवश्यक हैं कि उपाय करें अपन, वरना तो छोटी छोटी सी चीज़ों पर हम अहंकार कर लेते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो अहंकार नहीं करेगा। इसमयेन्योन अन्यान अत्येति धर्म स्थान गर्विताशया सोत्येति माचनीयम ना धर्मो धार्मिकैर विना। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि अगर मैं अहंकार के वशभूत होकर के अपने साधर्मी का तिरस्कार कर दूंगा तो वो साधर्मी का तिरस्कार नहीं है, वो तो मेरे ही धर्म का तिरस्कार है, क्योंकि धर्म बिना धार्मिक के रह कैसे सकता है। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रहता, और अगर हमने अपने अहंकार वश किसी धर्मात्मा पुरुष का तिरस्कार कर दिया है तो वास्तव में हमने अपने आत्म धर्म का ही तिरस्कार किया। वो मान कषाय जो है हमें सबका तिरस्कार करने के लिए और अपनी आत्म प्रशंसा के लिए प्रेरित करती है। हमें सावधान रहना चाहिए, जब जब हमारे भीतर आत्म प्रशंसा की भावना आ जाए तब तब सूत्र जी का सूत्र याद आ जाना चाहिए। अकेले दस लक्षण पर में सूत्र जी का सूत्र याद नहीं आना चाहिए, हमेशा याद आना चाहिए। आत्म प्रशंसा क्या कहते हैं उसमें, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादनोद्भाविनी च नीचैर गोत्रस्य। नीच गति जो है, नीच गोत्र कैसे बंधता है, परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की तो निंदा करना और अपनी आत्म प्रशंसा करना, दूसरे के विद्यमान और अविद्यमान दोषों को कहना बहुत बहुत कठिन बात है। दूसरे के वो कह रहे हैं कि अविद्यमान दोषों को तो कहने नहीं, विद्यमान दोषों को भी मत कहना, और अपने अपने विद्यमान और अविद्यमान दोनों गुणों को भी नहीं कहना। हम तो जो है विद्यमान गुणों को तो छोड़ो, अविद्यमान गुणों को भी सुनना चाहते हैं अपने भीतर, और दूसरे के अविद्यमान दोषों को भी जो है उसमें आरोपित कर देते हैं। हमारी क्या स्थिति होगी, हमें ऐसा विचार करना चाहिए, तब जाकर के हम अपने उस मान कषाय को, ये जो है आगम के वचन जो है वो हमारी उस मान कषाय को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा तुरंत मन में आ जाना चाहिए कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह अगर मैं करूँगा और ये जो नीच गोत्र है वो दूसरे गुण स्थान तक ही बनता है, मिथ्यात्व के साथ ही बनता है। जब जब भी दूसरे की निंदा करने का भाव आ जाए, दूसरे के दोषों को कहने का भाव आ जाए तो समझना गुण स्थान तो गिर ही गया, मिथ्यात्व आ गया, नीच गोत्र का बंध करने वाला कारण बने। ऐसा अगर अपन थोड़ा सा आगम का भी विचार कर लेवें तो फौरन जो है मन संभल जाएगा। और नहीं हो इस तरह का, किसी को क्षयोपशम नहीं हो, इस तरह की समझ नहीं हो, तो और छोटी छोटे से भी उपाय हैं भैया जिनसे हम अहंकार को जीत सकते हैं। वरना तो कदम कदम पर अब भी अपन यहाँ से उठेंगे और बाहर निकले और किसी का थोड़ा सा धक्का लग गया, क्या देख के नहीं चलते, ऐसा कह देंगे या दूसरे को धक्का दे देंगे, दूसरे को गिराने की चेष्टा करेंगे। ये जो मन वचन काय से हम दूसरे को नीचा दिखाने और गिराने की चेष्टा करते हैं वो तो हमारा अहंकार है, बहुत हिडन, बहुत पैसिव, बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत छिपा हुआ। जहां जहां भी हमारे भीतर ईर्ष्या है, जहां हम दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, समझना वो सब हमारा अहंकार है। ऐसे नहीं दिखता वो, हमें लगता कि हम कहां अहंकार कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं तब भी वो हमारा अहंकार का एक ईर्ष्या के रूप में एक कहना चाहिए मैनिफेस्टेशन है, एक फैलाव है, वो भी अहंकार का ही फैलाव। हमें इससे, इस तरह की चीजों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा देखो, अपन दूसरे को कोई क्रोध करे अपने सामने तो अच्छा लगता क्या अपन को? कोई अपने सामने मान सम्मान की आकांक्षा रखे तो अपने को अच्छा लगता क्या वो व्यक्ति? जब किसी को कोई क्रोधी व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, कोई मानी व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम स्वयं जब क्रोध करते होंगे तो लोगों को कैसे लगते होंगे? जब हम खुद सम्मान की आकांक्षा करते होंगे तो लोगों को कैसे लगते होंगे? जब हमें कोई सम्मान की आकांक्षा रखने वाला अच्छा नहीं लगता है तो हम स्वयं जब सम्मान की आकांक्षा करते होंगे तब हम कैसे लगते होंगे? ऐसा भी छोटा सा विचार कर ले, जो चीज़ हमें दूसरे की अच्छी नहीं लगती भैया, वो हम स्वयं भी करते हैं तो दूसरे को अच्छी लगती होगी क्या? बस इतनी इतनी छोटी सी बात, अगर हम ऐसा ऐसा विचार भी कर लेवें तो भी संभव है कि बहुत हम शांति के साथ इस चीज़ को समझ सकते हैं। और दूसरी बात, सह अस्तित्व की भावना अगर हो तो हम अपने अहंकार को जीत सकते हैं। मैंने आपसे कहा था एक अकेले चलना बहुत आसान है, क्योंकि मनमानी करने की पूरी गुंजाइश है, चाहे जो करो कोई नहीं देखने वाला। इसलिए एक अकेले चलना बहुत आसान है, किसी के साथ चलना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका मन रखना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा कठिन है किसी के पीछे चुपचाप सिर झुकाए चलना, उसके चरणों में अपने को समर्पित कर देना और अपने मन का कुछ भी नहीं, जो गुरुजी कहें वैसा ही करूँगा, जो बड़े जन कहें वैसा ही करूँगा, उनके कदमों पर उनके बताए रास्ते पर चलूँगा, ऐसा अगर करें तो ये तो बहुत कठिन। इसलिए विनय कठिन, अहंकार बहुत आसान, सहअस्तित्व बहुत कठिन है। हमें प्राणी मात्र के बीच और अपने जीवन को जीना है, दो ही तरह से जी सकते हैं। अभी हम कैसा जीवन जीते हैं? सेल्फ सेंटर्ड, हम केंद्र में हैं, बाकी सब हमारे चारों तरफ हमारी सेवा में, ऐसा जीवन भी जीते हैं। और एक दूसरा जीवन है कि नहीं, मैं तो सबकी सेवा के लिए हूँ, किसी को मेरे द्वारा अहित ना हो, सबका मेरे द्वारा कल्याण हो, ऐसी भावना से भी जी सकते हैं। मैं सबके काम आ सकूं, ऐसी भावना से जीना, ये अपने अहंकार को कम करना है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी जो है वो बहुत कहना चाहिए, शेर का उदाहरण है, शेर कभी समूह में नहीं रहता, हिरण हमेशा समूह में, बहुत निरीह होते हैं हिरण। जितने भी शाकाहारी हैं वे सब समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मांसाहारी जितने हैं एक अकेले, देख लो आप, सिंह अकेला रहता, गायें झुंड में रहती हैं, हाथी शाकाहारी है प्योर झुंड में रहता है। जितने भी इस तरह के विनम्र हैं जो लोग, वे सब चाहेंगे कि नहीं, मैं जो है सह अस्तित्व की भावना रखूं, यहाँ सब जीव अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी अपना जीवन यापन करूं, उनके काम आ सकूं, नहीं सब मेरे काम आए, सब मेरे अनुसार चले, तब तो फिर वो अहंकार हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं कराएगा, बल्कि हमारा धीरे धीरे पतन ही कर देगा। भैया बूंद की तरह जीना, और सागर में मिल गए तो ध्यान रखना सागर ही बन जाते हैं बूंद होकर के भी। एक छोटी सी बूंद है, अगर वो अपने अस्तित्व को खो दे थोड़ी देर को तो लगता है। विनयवान को बहुत सावधानी रखना पड़ती, विनय करते समय ऐसा लगने लगता है जैसे हमारा अस्तित्व तो मिटी गया, हम तो झुक गए, हमारी कार्य गई अब। हाँ, लेकिन वो प्राप्त क्या कर लेता है अंतरंग में, ये दिखाई भले ही नहीं पड़े, पर वास्तव में प्राप्त तो उसे ही होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बूंद अगर अपने अस्तित्व को खो दे समुद्र में तो समुद्र हो जाती है। हम अगर अपने अहंकार को खो देंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी विनय हमारे लिए पूरी तरह से ऊंचा उठा देगी, हमें बड़ा बना देगी। वशिष्ठ और एक विश्वामित्र, दो लोगों के बारे में आता है, ऐसी कहानी आती है कि विश्वामित्र बड़े थे, लेकिन वशिष्ठ को जो है थोड़ा सा अहंकार था उनके मन में कि हम क्यों नहीं बड़े हैं। अब विश्वामित्र रिटायर हो गए हैं तो अब हमको बड़े मान लेना चाहिए उनको, और वो चाहते थे कि विश्वामित्र उनका सम्मान करें, लेकिन विश्वामित्र ने कभी उनका अपमान भी नहीं किया पर सम्मान भी नहीं किया। अरुंधति उनकी जीवन साथी थी विश्वामित्र की, उनके सारे बच्चों को वशिष्ठ ने श्राप देकर के नष्ट कर दिया था। ऐसा आता है, घटना आती है, अपन को घटना से ज़्यादा महत्व उस घटना के पीछे छुपा हुआ क्या तथ्य है ये है।
तो एक दिन जो है विश्वामित्र के घर में नमक भी नहीं था, तो अरुंधति से बोले कि वशिष्ठ के घर से ले आओ ना नमक। तो बोले कैसी बात करते हो, तुम्हें वो नष्ट करने पर उतारू है, अगर तुम्हारा इतने ही उनसे प्रेम है तो उसको एक बार ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते, उसका सम्मान क्यों नहीं कर देते। तो विश्वामित्र ने मालूम क्या कहा था कि मेरा उससे प्रेम है इसीलिए तो मैं उसको ब्रह्मर्षि नहीं कहता हूँ, इसलिए तो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूँ, मुझे बहुत प्रेम है उससे। उसी दिन की बात है कि जब वो अपनी जीवन साथी से इस तरह की चर्चा कर रहे थे तो वशिष्ठ उसके दरवाजे पर बाहर खड़े थे कि आज तो दो दो हाथ कर ही लेंगे विश्वामित्र से ऐसा। और जब उन्होंने सुना कि विश्वामित्र कह रहे हैं अपनी जीवन साथी से कि मेरा तो बहुत प्रेम है इसीलिए तो मैं उसको ब्रह्मर्षि नहीं कहता, उसका सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ बहुत प्रेम की वजह से, और आकर के वे चरणों में झुक जाते हैं विश्वामित्र के, तो वशिष्ठ को विश्वामित्र उठा करके हृदय से लगाते और कहते हैं ब्रह्मर्षि अब तुम मेरे से भी बड़े हो गए, तुम में झुकना आ गया, अब तो मैं तुम्हें बड़ा मान दूंगा, जो आपसे झुक कर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा, ये मान के चलिए जो आपसे झुक कर मिला होगा। देखिए अपन सामान्य रूप से देख लेंगे कि कोई व्यक्ति अपने चरणों में झुके तो अपन क्या करते हैं, अरे नहीं 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 ऐसे उठाते हैं उसको, अपन भी झुक जाते हैं, और अगर कोई अपने सामने ऐसा आकड़े तो अपन भी कहते हैं हाँ क्या बात है, अब करना पड़ेगा, वो ऐसे करोगे तो हमें भी ऐसे ही करने पड़ेगा, और अगर झुकेंगे तो हम भी झुकेंगे। ये एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे विनय और अहंकार का अपने आप ही फल क्या है ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है। भैया और विशेष आपसे क्या कहें, मैं बहुत छोटी छोटी बातें जानता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं जानता हूँ, बस इतना ही है कि हमको जो है अपने जीवन में वाणी की भी विनय, वाणी की विनय क्या है मधुरता, कर्म की विनय क्या है, शरीर की विनय क्या है, शरीर की विनय है अच्छे कर्म करना, ये शरीर की विनय है, उसमें लिखा है कि गुरुजनों के सामने अपने हाथ पैर और माथा इत्यादि सब संकुचित, अर्थात इनके द्वारा कुछ भी अभिनय ना हो जाए शरीर के द्वारा, ये शरीर की विनय है जिसको अपन उपचार विनय कहते हैं कि गुरुजन आ गए आचार्य आ जाएं, तो उसमें लिखा है कि साधु जन जो है आचार्य के आने पर खड़े हो जाएं, उन्हें बैठने के लिए स्थान दें, उनके थोड़ी दूर तक आगे आगे वो पीछे पीछे उनके चलें, उन्हें रास्ता इत्यादि बताएं, ये सब क्या है, ये शरीर की विनय है। और मन की विनय, मन की विनय है मन में श्रेष्ठ विचार होना, यही मन की विनय है। तो अपन तीनों विनय सीखें, मन में अच्छे विचार रखें दूसरे के प्रति, दूसरे का सम्मान करें। अच्छा एक चीज़ है, अपन जितना दूसरे का सम्मान करेंगे भैया तो अपने को भी उतना ही सम्मान मिलेगा, ये तो सीधा हिसाब बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई अच्छा आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ क्या कि सच कह रहा हूँ, जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप मानते क्यों नहीं, कोई नहीं मानता, हम खुद भी नहीं मानते होंगे, दूसरे को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, हाँ बहुत विशाल बहुत उदार हृदय चाहिए, दूसरे का सम्मान, दूसरे की जरा सी योग्यता के लिए वाह वाह कहना बहुत कठिन होता है, अपनी तो जरा सी योग्यता के लिए वाह वाही सुनने के लिए कान हमेशा तरसते रहते हैं, लेकिन दूसरे की योग्यता के लिए मुख नहीं खुलता प्रशंसा में। हाँ अपन से कोई अगर कोई के बारे में प्रशंसा करे तो अपन जल्दी विश्वास नहीं करत, हाँ ठीक है, और अगर कोई कहे कि तुमने उनकी सुनी, अरे तुमने आज सुनी हम तो पहले से जानते हैं। अब देखो आप, हम दूसरे की अगर कोई निंदा करे तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और दूसरे की कोई अच्छाई बताए कि तुम्हें मालूम उनके भीतर ये अच्छी बातें हैं, हम सहसा विश्वास नहीं करते, ये क्या चीज है, ये अपने सम्मान की आकांक्षा और दूसरे के अपमान की आकांक्षा ही तो है, यही तो हमारी मान कसा है और क्या, हमें समझना चाहिए। इस तरह जब भी जो है हम दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो हमारा ही अहंकार कमती होगा। मैंने आपसे कहा था कि दो उपाय बताऊंगा, वो मैं बार बार उसको भूल ही जाता हूँ, ये तो इतने सारे उपाय तो बता दिए, पर दो मुख्य उपाय जो है जो मैं बहुत सोचता रहा कि क्या उपाय है इस अहंकार को जीतने का, तो सबसे पहली चीज़ प्रार्थना, भगवान की पूजा करना। अपन ने कितनी अच्छी चीज़ चुनी है, अपन किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते कभी, तो यहाँ आकर के भगवान के गुणगान कर रहे हैं ताकि आदत पड़ जाए गुणगान करने की, और भगवान के सामने क्या कहते हैं, प्रभु पतित पावन और मैं अपावन, अपनी निंदा कर रहे भगवान के सम्मुख
और भगवान की प्रशंसा कर रहे। आप तो पतित पावन हो और मैं अपावन, ऐसा किसी और के सामने कई आज तक बताओ नहीं कह पाते। अगर यहां वो आदत बनती जाएगी तब फिर जो है हम बहुत जल्दी और सबके सामने भी कह सकेंगे कि हाँ सचमुच मैं पतित हूं, बुरा जो देखन मैं चला, जो जो क्या कहते हैं उसको, हाँ जो निज जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा ना। ये क्या चीज है, ये प्रार्थना जो है वो हमें विनय सिखाती है। माँ कहती है ना बच्चे को ढोक देओ, झुको माथा झुकाओ, ऐसे ही जबरदस्ती भी उसका उसकी रख देती गर्दन, तुम बचपन से झुकना सीखो नहीं तो अकड़े अकड़े फिरोगे, तो अकड़ना तो खास मुर्दे की निशानी है। हाँ लिखा है उसमें, डूबते कौन हैं जो जिंदा हैं, मुर्दा नहीं डूबता, बहता चला जाता पानी के ऊपर, डूब नहीं सकता, अकड़ा हुआ है वो ऐसा लिखा है उसमें, वो पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ फिर अकड़ जाता तो डूबता नहीं, ऐसा उसमें उदाहरण दिया हुआ। तो हमें जो है ये अकड़ छोड़नी चाहिए, और अकड़ छोड़ने का उपाय क्या, यही सबसे बढ़िया प्रार्थना, भगवान के सामने झुकना सीखें तो हमारे जीवन में विनय आएगी। और दूसरी चीज ये तो हो गई भगवान के सामने, दूसरी अपने बड़े जनों के उपकार को हमेशा याद रखें तो बहुत विनय आएगी। हाँ कैसे छोटे से बड़े भय हैं, ना कच्चू न जानते कि कहाँ कैसो खाओ जाते और कहाँ कैसा चलना जानते हैं, उंगली पकड़ पकड़ के चलना सीखा, उपद्रव कर रहे, मताई की जान सांसत में है, भैया अपने खेल रहे। बताओ आप, अभी रोज का देखता हूँ मैं, और जब जब देखता हूँ तब तब भीतर वही बात आती है कि अरे ये जो है अभी इतने छोटे से इसको बड़ा कर रही, अपना धर्म छोड़ रही, और फिर बाद में ये बड़ा हो जाएगा तो इसी माँ के सिर पे बैठने की कोशिश करे, और यही तो संसार है और क्या चीज, फिर भी मोह छूटता नहीं, इसी का नाम संसार है। इस मोह के वशीभूत जो है, और जीव इस तरह से अपना भी धर्म छोड़ता है लेकिन दूसरे जीव भी जो है अपने उस उपकार को भुला करके अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं। हम हमेशा अपने जीवन के लिए कितने लोग जरूरी, सांस ले रहे हैं वायु का एक जीव, ये बैठे हुए हैं किसने बनाया होगा, ये सब जिस पे बैठे हैं, ये बाजोटा जिस पे सांस रखे हैं, किसने ये पेपर बनाया होगा, किसने कलम बनाई होगी, किसने लिखने के लिए ये सब कितना सारा, दिन भर अगर हम गौर से देखें तो ये जिसने बनाया होगा, जिसने बनवाया होगा, जिसके नीचे बैठ करके और हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्या कमती उपकार है क्या ये। अरे ऐसा अगर सुबह से शाम तक अपने जीवन में उपकार का विचार करें तो अपने से ज्यादा तुच्छ और कोई समझ में नहीं आएगा। दिन भर हम कितने लोगों की मदद से अपना जीवन जीते हैं फिर भी हम अहंकार कर लेते हैं कि मैं अपने तरह से जी रहा हूं, मैं ही बड़ा हूं। अरे नहीं भैया, यहां जो है सब एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के सहयोग करते हुए और जीवन अपना जीते हैं, इसलिए सब एक दूसरे के प्रति विनय रखें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, और इस तरह अपने अहंकार को हम चाहें तो जीत सकते हैं और अपने उस मार्ग और धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। परि विनय बहुगुण बड़े जन की। हाँ वास्तव में ज्ञान तो वही है जो कि अपने से बड़े जनों के प्रति हमें विनय सिखाता है, और अपने जीवन में दूसरे के सम्मान की भावना, दूसरे के गुणों के प्रति प्रमोद की भावना सिखाता है। वास्तव में तो वही धर्म है, ऐसा ये जो मार्ग और धर्म है वो हम सबके जीवन में आए, हम भी विनयवान बने, हमारा हृदय कोमल हो, हमारा हृदय विशाल हो, हमारा हृदय उदार हो। ये सब चीज़ें जो है उसी मान कसाई के अभाव में मार्ग और धर्म के आने से ही प्राप्त होती हैं, ये सब हमें प्राप्त हों ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।